Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Jai Prabhupad 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 Jaya Jaya Prabhupad Jayam Vishnupad Paramahansa Parivraja Kacharya Shtotar Satahist Divine Grace Abhay Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupad Ki Jaya Anantakoti Vaishnav Vrind Ki Jaya श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री कार्तिक मास की जय श्री उपदेश अमृत की जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय निताय गौ प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna So thus far we have discussed the preface of the Nectar of Instruction and now we will commence discussion on the first verse अब तक हम उपदेशामृत के आमुख की चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद हम उपदेशामृत के प्रथम श्लोक से हम शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले संक्षेप में हम देख लें कि आमुख की जो महत्वपूर्ण वाक्य था उसके बारे में हमने क्या चर्चा किया था So we'll just briefly refresh our memories about what we had discussed when we were elaborating on this very important sentence that advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. Krishna Bhavanamrit mein pragati anuyayi ke manovritti par nirbhar karti hai. Is sandarbh mein anukul manovrittiyan aur प्रतिकूल मनोवृत्तियां दोनों की ही चर्चा हुई थी. आपने बहुत सारे सुझाव दिए थे और वो यहाँ पर जो प्रतिकूल मनोवृत्तियां हैं उनको यहाँ पे थोड़े बहुत आप यहाँ देख पाएंगे. सो सम ऑफ द फेवरेबल एटीट्यूड्स एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑन द बोर्ड यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन सम ऑफ द अनफेवरेबल एटीट्यूड्स दैट some of you had suggested. So these things as we discussed are very important for our Krishna consciousness because attitude is everything. Attitude will make or break our Krishna consciousness. जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारी मनोवृत्ति ही सब कुछ है. ये हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकती है या हमारी भक्ति को रोक सकती है. इसलिए सही अनुशीलन, सही मनोवृत्ति का अनुशीलन करना और प्रतिकूल मनोवृत्ति को त्यागना ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए. Therefore it is very important that we understand and accept in our life with determination the favorable attitudes and understand and with the same determination reject the unfavorable attitudes in Krishna consciousness. तो उतनी ही दृढ़ता से हमें दोनों अनुकूल मनोवृत्तियों को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल मनोवृत्तियों को त्यागना चाहिए. तो इस मनोवृत्ति के विषय के ऊपर अभी कितने चार क्लास हो गए इस मनोवृत्ति के विषय के ऊपर. काफी लंबा चर्चा चली और कई हमने लीलाएं भी सुनी, कई उदाहरण भी शास्त्रों से उसके बारे में चर्चा की, आपके भी कई सुझाव आए. सो इन द कोर्स ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव स्पेंड फाइव क्लासेस केवल इस मनोवृत्ति के विषय पे चर्चा हुई है. इसमें से वी हैव ऑल्सो हर्ड मेनी लीलाज ऑफ पास्ट टाइम्स इन दिस कनेक्शन and also many examples from the Shastras. So now it is time for us to move ahead to the first verse and we come back to the overview when we had discussed. You can see the charts on top. Abhi hum punah Upadeshamrit ki suchi ki charcha karenge. Aap upar dekh sakte hain jo hum 6-7 class pehle charcha kar chuke the. वो भी याद दिलाइए, आपके किताब में आपने लिखे होंगे ये सब. यू मे हैव रिटन इट डाउन इन योर नोटबुक. सो लेट अस जस्ट रिकैपिचुलेट वेरी ब्रीफली. देर आर 11 वर्सेस इन द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इन ईच ऑफ देम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज गिवन अस द टॉपिक ऑफ ईच वर्स. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 11 श्लोकों के हर एक श्लोक का विषय दिया है और इन विषयों को श्लोक के नंबर के नीचे लिखा हुआ है. सो द टॉपिक्स ऑफ द वर्स हैव बीन गिवन बिलो द वर्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्स बिगिनिंग विद वाचो वेगम द टॉपिक इज सिम्टम्स ऑफ अ त्रिदंडी स्वामी. उदाहरणार्थ पहला श्लोक जो कि वाचो वेगम से शुरू होता है उसका विषय है कि एक त्रिदंडी स्वामी के लक्षण. ऐसे 11 श्लोकों के विषय की सूची हुई है. सो वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ईच ऑफ दीज 11 वर्सेस. ऑल्सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड दीज वर्सेस इनटू डिफरेंट has clubbed them into different larger topics. So Srila Bhakti Vinod Thakur ne इन 11 श्लोकों का वर्गीकरण किया है और एक हर एक वर्ग में एक और बड़ा विषय है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्स डील्स विद सिम्टम्स ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल्ड मध्यम अधिकारी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन्स. वर्सेस 2-4 डील विद द एक्सटर्नल डीलिंग्स एंड द इंटरक्शंस ऑफ अ मध्यम अधिकारी गोस्वामी एंड ऑल्सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति दैट ही फॉलोज. तो पहले श्लोक में एक आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षणों की चर्चा है. श्लोक संख्या 2-4 तक एक मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार वो उसके भक्ति के नियम कैसे होते हैं इनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी करते हैं. आगे चल के 5-8 श्लोक में एक मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि एवं आंतरिक विकास की चर्चा श्री रूप गोस्वामी करते हैं. इन वर्सेस 5-8 ऑफ द उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाद डिस्कसेस विजन एंड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द मध्यम अधिकारी गोस्वामी. फाइनली इन 9-10 ही डिस्कसेस द क्लासिफिकेशन ऑफ होली प्लेसेस एंड वर्शिपर्स. 9वें और 10वें अध्याय श्लोक में वो आराध्य स्थल एवं व्यक्तियों की श्रृंखला की चर्चा करते हैं और अंतिम श्लोक में अर्थात 11वें श्लोक में पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ महिमा अर्थात राधा कुंड की चर्चा करते हैं. सो इन वर्सेस 9-10 भक्ति विनोद ठाकुर डिस्कसेस और रूप गोस्वामी डिस्कसेस द क्लासिफिकेशन ऑफ होली प्लेसेस एंड वर्शिपर्स. And also in the final and 11th verse, he talks about the supreme most glory in the whole universe, which is Radha Kund. So this is the overview of the whole nectar of instruction. तो ये सारे उपदेश अमृत की सूची है. तो अब याद रखिए कि कितने गहरे विषयों की चर्चा यहाँ पर हुई है. So please try to appreciate that even the nectar of instruction appears like a very slim, small book. Supposed to be meant only for neophyte devotees, but it contains such deep subject matters also. तो यह भी याद रखना चाहिए कि यद्यपि ये उपदेशामृत नौसुखिय भक्तों के लिए कहा जाता है, फिर भी इसमें ऐसे महत्वपूर्ण और गहरे विषयों की चर्चा भी पाई जाती है. So let us begin now by chanting the first verse. And every day we will discuss briefly the purports by Srila Prabhupada. और हर दिन हम संक्षेप में श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की चर्चा भी करेंगे. आपसे निवेदन है कि यहाँ क्लास में आने के पहले आप इन तात्पर्यों को पढ़ के आए. ये आपका आश्रम पाठ होगा, आपका गृह पाठ. So the request is that before you come to this class, you please read the verse and purport that we are going to discuss on that day, so that we don't have to read every single line of the purport. We will only go section by section. यदि आप अच्छी तरह से तात्पर्य को पढ़ के आएंगे तो हमें तात्पर्य के प्रत्येक वाक्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. केवल संक्षेप में, सार रूप में तात्पर्य की चर्चा हम कर सकते हैं. तो अभी पहले श्लोक के तात्पर्य आप में से कई भक्त पढ़ के आए हैं. हैव एनी ऑफ यू रेड द परपोर्ट टू द फर्स्ट वर्स? हाउ मेनी हैव रेड एंड आप में से कितने भक्तों ने पढ़ लिया है पहले श्लोक का तात्पर्य अभी आने के पहले? ठीक है, तो अगले बार से कृपया आप सब पहले से पढ़ के आइए. सो नेक्स्ट टाइम काइंडली रीड द purports. Of course now it is Kartik time, very very busy, so many devotees are engaged in so many services, they can't even come for the class because of so many services now. But anyway, for those few devotees who are able to come, we should continue the class rather than stop. Abhi Kartik mahine mein bahut sare bhakton ki bahut sari sevaen hain aur isliye kai bhakt aa bhi nahi pa rahe hain seva ke बोझ के कारण, लेकिन फिर भी जो भक्त आ पा रहे हैं उनके लिए तो हम ये क्लास जारी ही रखेंगे. सो लेट अस टेक दिस डिस्कशन वेरी सीरियसली. सो प्लीज रीड बिफोर यू कम नेक्स्ट टाइम. सो द फर्स्ट वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. इट डील्स विथ द सिक्स अर्जेस. तो पहले श्लोक का विषय है षड्वेगम. So you can write down actually in your notebook, in your book itself, in the Nectar of Instruction book that you bring. Now you can write down right next to the verse. That, like for example, the first verse, Symptoms of a Self-Controlled Madhyam Adhikari. So you can write down that in the book itself here. So whenever you study the Nectar of Instruction next time, these will be notes that will be very convenient for you to study. तो आप ग्रंथ में ही यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है कुछ छोटा छोटा, ताकि अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो उसी समय आपको ये आसानी से समझ में आएगा. सो द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट वर्स इज षड वेगम. षड वेगम, वेग मीन्स पुश. वेग का मतलब है जो हमारे इंद्रियों को बहुत प्रभावित करते हैं, खींच लेते हैं. जो खींचा तनाव है वो वेग है. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथिवीम सशिष्यात्. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथिवीम सशिष्यात्. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथिवीम सशिष्यात्. We should all try to memorize these verses, and hopefully, all the 11 verses should be memorized by us step by step. If you can do it right away, in the next few days, that is best. If not, as we go along, try to memorize each of these 11 verses. उपदेशामृत के 11 श्लोकों को आप कंठस्थ करने का पूरा प्रयास कीजिए. यदि आप जल्दी ही कर सकते हैं 2-4 दिनों में तो बहुत अच्छा है. यदि 2-4 दिनों में नहीं हो पाता तो जैसे जैसे चर्चा चलती है, भले 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन अवश्य इन 11 श्लोकों को आप कंठस्थ कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं. बिकॉज दीज वर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So I will only read the translation. So for you, the work at the ashram is in the ashram room. You have to read the word for word meaning, the translation and the purports. And make any points you have, any questions you have. तो आपके लिए ये आश्रम में जाके ये सेवा है कि आप पूरा शब्दार्थ पढ़ें, अनुवाद पढ़ें, और तात्पर्य पढ़ने के बाद कि यदि कोई मन में प्रश्न हो तो वो भी आप लिख के ले आ सकते हैं. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciples all over the world. वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। सो द टॉपिक इज हु इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स, कि कौन है व्यक्ति जो शिष्य बनाने के लिए योग्य व्यक्ति है। तो कौन है? जिन्होंने षड वेगों का दमन कर लिया है, जो इन छह प्रकार के वेगों को सहन करना सीखे हैं। विषहेत धीर है, जो विषहेत, विषहेत का तात्पर्य है कि जिन्होंने सहन करना सीखा है इनको। सो द कंक्लूजन इज दैट हु इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स, अ पर्सन हु हैज सबड्यूड these six urges, and not just subdued, but a person who has learnt to tolerate without getting much affected. The word used here is viṣaheta dhīraha. A dhīraha refers to a sober person whose senses are calm and controlled. Why are the senses calm and controlled? Viṣaheta, because he has learned to tolerate the urges, these six urges. तो ऐसे मध्यम अधिकारी गोस्वामी में भी वेग आ सकते हैं तरह तरह के, परंतु वेग आए भी तो उनको सहन कर सकते हैं और बिना विचलित हुए आगे अपने जीवन को बढ़ाते जा सकते हैं। So this means that even a मध्यम अधिकारी may feel these pushes from time to time or any time, but he is not disturbed by them. He will tolerate and go on with his life without any disturbance being caused. परंतु जो व्यक्ति इस योग्य नहीं है, जिसने सहन करना नहीं सीखा है इन षड वेगों को, वो बहुत विचलित हो जाएगा। हो सकता है कि उसका पतन भी हो जाए। But a person who has not learned to tolerate these six urges will get very disturbed, and not only that, he may actually even fall down, he may commit some sinful activities. Ho sakta hai ki wo koi paap kaam bhi kar le. So here we are not talking of a premi bhakta, we are not talking of a devotee who is on the level of prema bhakti. Of course, a devotee on the level of prema bhakti automatically has all the senses controlled. That is an automatic byproduct. But even at a much lower level, a person can control the senses, tolerate the urges, and go on with life without getting disturbed. It is possible, even at a much lower level. Although the complete solution comes only when we attain the level of prema bhakti. So yahan par ek प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त किए हुए भक्त की चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि एक प्रेम भक्ति के स्तर में होने वाले भक्त को भी इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से वश में है ही, परंतु प्रेम भक्ति के स्तर से काफी नीचे भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है और विचलित न होकर वो भगवान की सेवा में निष्ठावान रूप से आगे बढ़ सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो दिस सिक्स अर्जेस वी हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द सिक्स अर्जेस विदाउट लुकिंग, कैन एनीबॉडी से वो छह वेग कौन से हैं? कोई बिना देखे हुए नीचे किताब में बता सकते हैं? वाचो वेगम, संस्कृत भी बोल लीजिए, urge to speak, वाचो वेगम, बोलने की प्रवृत्ति। दूसरा मन का वेग, संस्कृत मनसः वेगम, the urges of the mind. Next, हाँ, क्रोध, क्रोध वेगम, the urges of anger, क्रोध का वेग, और हाँ जिह्वा वेगम, the urges of the tongue, उदर वेगम, the urges of the belly, तो जिह्वा वेग और उदर वेग में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्ज ऑफ द टंग एंड द अर्ज ऑफ द बेली? द टंग, द अर्जेस ऑफ द टंग लीड वन टू ईट पैलेटेबल एंड टेस्टी फूड्स एंड द अर्ज ऑफ द बेली अर्जेस वन टू ईट मोर क्वांटिटी. वन रिलेट्स टू द क्वालिटी और टाइप, अदर रिलेट्स टू क्वांटिटी. तो जिह्वा जो है, जिह्वा वेग हमें स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने के लिए प्रेरित करता है. तो भोजन की गुणवत्ता से संबंधित है, क्वालिटी से. लेकिन उदर वेग जो है वो मात्रा से संबंधित है. ज्यादा से ज्यादा हम खाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, तो ये उदर वेग. और अंत में एंड फाइनली उपस्थ वेगम. उपस्थ वेगम मीन्स जननेन्द्रियों का वेग, द अर्ज ऑफ द जेनिटल्स. सो दीज आर द सिक्स अर्जेस विच मस्ट बी कंट्रोल्ड. इफ दीज सिक्स अर्जेस आर नॉट कंट्रोल्ड देन वी कैन नॉट बी धीर, वी कैन नॉट बी सोबर. यदि इन छह प्रकार के वेगों को हम सहन नहीं करने सीखते हैं तो फिर हम धीर व्यक्ति नहीं बन सकते, हम अधीर हो जाएंगे. अधीर व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता कार्यों में. अ पर्सन हु इज नॉट सोबर कैन नॉट बी स्टेडी एंड स्टेबल इन हिज एक्टिविटीज एंड इन हिज लाइफ. सो इज आवर गोल टू कंट्रोल द सिक्स अर्जेस? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या इन छह वेगों का दमन करना है? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या छह वेग? कृष्ण प्रेम. तो फिर इफ आवर गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम देन व्हाट इज द नीड टू कंट्रोल द सिक्स अर्जेस? यदि हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम है तो फिर इन षड वेगों का दमन करने की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड? यस, विदाउट कंट्रोलिंग सेंसेस वी कैनॉट अटेन दैट प्लेटफॉर्म. इंद्रियों को वश में किए बिना हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते. क्यों? Why? Why? इंद्रियों को वश में करना चाहिए. क्यों? In the beginning we must control the senses, yes, but why? If our goal is Krishna Prem, then why do we need to control the senses at all? Then we can remember Krishna always, correct? Closely again? That is correct answer, that is the essence, something more? Yes. When the senses are not controlled, then the senses are absorbed in sense gratification and not in Krishna. Hamari indriyan jab vash mein nahi hoti hain, to Krishna mein man केंद्रित होने के बजाय हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में मग्न हो जाता है, संसार में मग्न हो जाता है, तो कृष्ण में नहीं होता. तो जब मन कृष्ण में केंद्रित होता है तब हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, प्रेमा भक्ति की अवस्था को धीरे धीरे से प्राप्त कर सकते हैं. परंतु जब मन इधर उधर भाग रहा है तो फिर कृष्ण के ऊपर मन केंद्रित नहीं हो रहा है, तो प्रेमा भक्ति कैसे होगी? So if the mind is too much distracted by sense enjoyment, then the mind cannot focus on Krishna. And if the mind cannot focus on Krishna, then where is the question of coming to the level of Prema Bhakti, which is such a high platform? In Bhagavad Gita there is a verse, no? Second chapter, that says, for one who is involved in sense gratification, his mind cannot be focused. Bhagavad Gita mein ek shlok hai. कि जिस जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है कि वो किसी एक चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकता. कौन सा है वो श्लोक? व्यवसायात्मक. क्या मतलब है इसका? भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, दिस वर्स फ्रॉम सेकंड चैप्टर. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स? शब्दार्थ करके, यू सी द वर्ड फॉर वर्ड एंड यू टेल. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम प्र आसक्त प्रकृष्ट रूपेण आसक्त आसक्त मीन्स अटैच्ड अब्सॉर्ब्ड सो फॉर फॉर दोज पीपल प्रसक्तानाम प्रसक्तानाम इज फॉर दोज हु आर प्रसक्त जिन वो लोग जिनका मन इस प्रकार से आसक्त है बहुत तीव्रता से किस चीज में भोग में और ऐश्वर्य में कम थोड़ा जगह बनाइए आने के लिए इस तरफ आ जाइए थोड़ा तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्त जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति होती है तीव्र आसक्ति क्यों होती है क्योंकि मन चाहता है इन चीजों को इफ द माइंड लाइक्स दीज थिंग्स एंड द माइंड इज फोकस्ड ऑन एंजॉयमेंट एंड ऑप्युलेंस प्रसक्ता नाम फॉर दोज पीपल हु आर सो अटैच्ड टू ऑप्युलेंस एंड एंजॉयमेंट उन लोगों के लिए जिनका मन भोग और ऐश्वर्य के प्रति तीव्रता से आसक्त है क्या होता है उनके लिए अगला लाइन क्या है व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन तया अपहृत चेतसाम व्हाट डज इट मीन हाँ उनका चित्त जो है हर लिया जाता है देयर इंटेलिजेंस Their pure consciousness is stolen away, is kidnapped, taken away. Then, bahu shakha hi ananta. Samadho na vidhiyate. Vyavasaya atmika buddhi samadho na vidhiyate. So what is the meaning of that? They cannot have resolute determination. Ekagra chitta se wo aage नहीं बढ़ सकते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरत चेतसा सो बिकॉज ऑफ दैट दे कैनॉट अटेन एनी फिक्स्ड समाधि समाधि मतलब क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाधि व्हेन द माइंड इज फोकस्ड ऑन समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड समाधि विदाउट डिविएशन जब मन किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है लंबे समय के लिए और इधर उधर भटकता नहीं है तो ऐसे मानसिक अवस्था को समाधि कहते हैं सो इफ द माइंड इज नॉट बीइंग फोकस्ड ऑन एनी वन पॉइंट देन हाउ इज इट पॉसिबल टू फोकस इट ऑन कृष्णा इवन ऑन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट फोकस कॉन्स्टेंटली तो हम किसी भौतिक विषय पर भी अपने मन को केंद्रित नहीं कर सकते हैं तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते तो ऐसे एक एकाग्र चित्त नहीं बन पाता है सो वी कैन नॉट फोकस अवर माइंड ऑन एनीथिंग व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदना लेकिन जिसका मन इस प्रकार से केंद्रित होता है एकाग्र चित्त से जो भगवान की भक्ति में होता है तो उसका मन एकाग्र चित्त उसका चित्त वैसे स्थिर रहता है बहु शाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम लेकिन जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको चित्त को ऐसे एक स्थान में केंद्रित करना संभव नहीं है जगह जगह उनका मन बिखर जाता है सो फॉर दोज पीपल हु आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्णा देयर माइंड वांडर्स इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस एंड कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग सो वी परफॉर्म साधन भक्ति टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड साइमल्टेनियसली वी डू पॉजिटिव एक्शंस that can develop our attraction for Krishna. The negative actions of sadhana bhakti, nivritti, karma, they prevent our mind from being distracted by sense gratification. And the positive actions of sadhana bhakti, like chanting, etc., they make our mind attracted to Krishna. So with the combination of both these things, we are able to focus the mind better on Krishna. And we are not distracted so much by sense gratification. तो साधन भक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं एक है विधि और दूसरे निषेध जो विधि होते हैं सकारात्मक जो कार्य होते हैं उनसे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है जैसे जप कीर्तन अध्ययन श्रवण अर्चा विग्रह की सेवा इत्यादि. सो दीज पॉजिटिव एक्शंस लाइक वर्शिप ऑफ द डीटी, चैंटिंग द होली नेम्स एटसेट्रा, दे इंक्रीज अवर अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड. जो निषेध हैं वो हमें पाप कर्मों से बचाते हैं, इंद्र तृप्ति से बचाते हैं, ताकि हमारा मन भटक नहीं जाए. सो दे सेव अस फ्रॉम वॉन्डरिंग, आवर माइंड फ्रॉम वॉन्डरिंग. सो इन दोनों का परिणाम ये है कि हम कृष्ण के ऊपर मन को केंद्रित कर सकते हैं, हमारा मन इंद्र तृप्ति से विचलित नहीं होता है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ साधन भक्ति, एंड दिस इज पॉसिबल. द सेंस कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली बाय वन हु इज डूइंग भक्ति, नॉट फॉर अदर्स. तो जो भक्ति करते हैं केवल उन्हीं के लिए इंद्रियों को वश में करना संभव होता है. तो साथ साथ साधन भक्ति के दोनों प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक कार्यों को करना है. वी हैव टू डू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्शंस ऑफ साधन भक्ति साइमल्टेनियसली. देन वी सेंसेस कैन बी इजीली कंट्रोल्ड एंड माइंड कैन बी फोकस्ड ऑन कृष्णा. फिर हमारे इंद्र तृप्ति से मन हट जाएगा और हम मन जो है वो कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर पाएंगे. So this is the correlation of sense control and Krishna consciousness. तो ये है संबंध, इंद्रियों को वश में करना और कृष्ण चेतना में रहना, दोनों साथ साथ संबंध. जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं करते कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक साधन भक्ति नहीं करते इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते. Till such time as we don't control the senses, we cannot achieve Krishna prem. And till you perform sadhan bhakti, you cannot really control the senses. So both the things must go on simultaneously. But by practicing the rules and regulations of sadhan bhakti, automatically sense control is achieved and Krishna prema is achieved. So sadhan bhakti ke niyamon ka palan dhrita purva karne se indriyan bhi vash mein aa jati hain aur Krishna prema bhi prapt ho jata hai theek samay par. So now in this purport, Prabhu, we can divide the purport into many parts. आप घुमाएंगे उसको, chart को. तो ये षड वेग हैं. So these are the six urges which you have mentioned just in chart form, so it is easy to remember. When you study Srila Prabhupada's books, it is always helpful to make notes like this. If you study with making notes in this way, then you have the essence of the whole book in just a few pages. And it is easy for you when you revise the book or when you study to understand the subject matter and grasp it. तो जब हम प्रभुपाद जी के किसी किताब को पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि संक्षिप्त रूप में सारे किताब को हम समझ लें. Yes, can you turn over? You may have to do some exercise today. Sorry. So now there are four sections of the purport. Those of you who wish to note down, you may do so. तो तात्पर्य के चार भाग हैं. पहले भाग में, can all of you see this? आप सभी लोग देख सकते हैं. तो पहले भाग में श्रील प्रभुपाद प्रायश्चित की चर्चा करते हैं, दूसरे भाग में षडवेग और भक्ति से इनका निवारण इस विषय की चर्चा करते हैं, इसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवृत्ति टीका श्रील प्रभुपाद जी पेश करते हैं, और अंततः इस सारे तात्पर्य का निष्कर्ष. सो वी कैन डिवाइड द परपोर्ट इनटू फोर पार्ट्स. वन इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द परपोर्ट इज अटोनमेंट, वेयर प्रभुपाद विल डिस्कस द फ्यूटिलिटी ऑफ कर्मकांड टाइप ऑफ अटोनमेंट, एंड अल्टीमेटली ही विल कंक्लूड दैट इट्स ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस विच इज द परफेक्ट अटोनमेंट, द अल्टीमेट अटोनमेंट. तो इस प्रायश्चित के विषय में प्रभुपाद जी ये साबित करेंगे कि कर्मकांड, ज्ञान कांड इत्यादि ये अपूर्ण प्रायश्चित हैं, और परिपूर्ण प्रायश्चित केवल कृष्ण भावनामृत है. The second topic is the six urges and how they can be subdued by performing sadhan bhakti. The third is the same subject, but Srila Prabhupada has now quoted from the Anuvritti purport of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhakti Siddhanta's purport to Nectar of Instruction is called Anuvritti. So Prabhupada ji has quoted from that. And at the end of it, Prabhupada gives the conclusion or the summary of the whole purport. So now we will talk about atonement. Yes, please. Yes, can you please turn? What? Not written? Why? How many charts are here? After this not written? Okay. We'll see. Anyway, so I will translate into English. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं केवल सार दे रहा हूँ तात्पर्य का. अभी पढ़ना आपको अपने कमरे में जाके पढ़ना है. So you have to go to your rooms and actually read the purport. I will just give the summary of the purport, and then you go back and relate it to your study when you go back. If you go line by line, it will take too much time. हम प्रत्येक वाक्य पढ़के आएंगे तो बहुत समय जाएगा उसमें. So the whole subject starts with the question by King Parikshit, and he said, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? Parikshit Maharaj ka Srimad Bhagavat mein Shukadev Goswami se prashn hai ki yadi koi apni indriyon ko vash mein nahi kar sakta hai to aise vyakti ko karma kand ke prayashchit karma karne se kya labh milega. Tatpar ye hai ki wo vyakti बारंबार ऐसे ही पाप करता रहेगा क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं है. भले इंद्रियों के फल से वो मुक्त हो चुका होगा प्रायश्चित कर्म करने से, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई. तो पुनः पुनः वो व्यक्ति पाप करता रहेगा तो क्या लाभ है ऐसे प्रायश्चित का. बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सही कहा है परीक्षित महाराज ने. सो किंग परीक्षित एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन अ पर्सन सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड, he will keep on doing sins, and when he performs atonement from the Karma Kanda section of the Vedas, he will get free from the sinful reaction, but he has not become free from the propensity to commit sin, and therefore he will keep on committing sin. So then what is the use of such atonement? Very intelligent and good question. Okay, so then Srila Prabhupada is mentioning that what is the cause of suffering? The cause of suffering basically comes because we have uncontrolled senses. From uncontrolled senses, we commit sins and we suffer the sinful reactions which come in the form of various sufferings, maybe even going to hell. The hellish planets. So the first thing written on top there is uncontrolled senses leading to sinful activity, leading to suffering in hell and so on. So aniyantrit indriyon ke karan hum paap karm karte hain. Paap karm jab karte hain to paapon ke phal bhi bhugatne padte hain humko. Wo bhale narak mein ho, kisi pashu yoni mein ho ya manushya yoni mein ho, लेकिन अवश्य कर्मों के फल, हमारे पापों के फल हमें भुगतने पड़ेंगे. सो देखिए, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण सारी दुनिया की समस्या चल रही है. सो द होल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेंसेस. हाँ जी, इसको घुमाएंगे. सो नाउ श्रील प्रभुपाद टॉक्स अबाउट, He actually mentions three people, but by extension I have added a fourth category. He talks of these different categories of people. Srila Prabhupada ji teen prakar ke logon ki charcha karte hain yahan pe, lekin humne aur ek varg badha liya hai. The first category of person, he understands simply by hearing. The second category, he understands only by seeing. Hearing is not sufficient for him. He hears but is not convinced. He must see with his own eyes. Then he is convinced. The third category is not convinced even after hearing and seeing. He wants to experience. So the third category of person, he learns only after experiencing something himself. And the fourth category of person is one who sees, who experiences, who hears, but still after suffering, he still commits the same activity again and again. तो ये चार प्रकार के लोग कौन से हैं? पहले प्रकार वो हैं जो केवल सुनकर सीख लेते हैं. चोरी नहीं करना चाहिए, सीख लिया, नहीं करेगा कभी चोरी. लेकिन थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो केवल सुनकर नहीं सीखते हैं. वो कहते हैं कि मुझे देखना भी है कि किसी व्यक्ति ने गलत काम करके उसको दंड मिला है, हम साक्षात देखेंगे फिर हम मानेंगे. कोई ऐसे लोग होते हैं जो सुनकर नहीं मानते, देखकर भी नहीं सीखते, उनको स्वयं अनुभव करने की आवश्यकता होती है. ये तीसरे श्रेणी के लोग हैं. खुद अनुभव कर लेते हैं, खुद चोरी करता है, पिटाई होती है, अपमान होता है, फिर कहता है अभी और नहीं चोरी करेंगे. लेकिन चौथे वर्ग के आदमी होते हैं जो सुनते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं, देखते हैं कि चोर की पिटाई हो रही है, खुद भी चोरी करके पीटे जाते हैं, लेकिन फिर भी चोरी से मन को हटा नहीं सकते, बार बार चोरी करते हैं, बार बार पिटाई होती है. ये चौथे श्रेणी के आदमी है. सो दिस फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर. अमंग दीज हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट कैटेगरी? सबसे बुद्धिमान वर्ग है पहला. द फर्स्ट मोस्ट इंटेलिजेंट कैटेगरी इज द फर्स्ट कैटेगरी हु लर्न्स सिंपली बाय हियरिंग. स्टीलिंग इज बैड, स्टीलिंग विल लीड टू पनिशमेंट. ही हियर्स वंस, यस करेक्ट, आई विल नॉट स्टील. मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन. एंड द लीस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज द फोर्थ कैटेगरी who repeatedly does those things is punished but keeps on doing it. तो जो चौथे श्रेणी का आदमी है वो सबसे कम बुद्धिमान है, सबसे मूर्ख व्यक्ति है. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जगह जगह पे कि हमें शास्त्रों के बातों को सुन लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, केवल अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है. So at various places Srila Prabhupada explains that we must hear the voice of the scriptures. One who learns simply by hearing the scripture is most intelligent. जो केवल सुन के शास्त्रों की वाणी को सुन के सीख लेता है वो सबसे बुद्धिमान है. जैसे एक उदाहरण, let us take an example. हम लोग भागवत से सुनते हैं कि आगे चल के विवाहित जीवन में, गृहस्थ जीवन में कितना कष्ट होता है. We hear in the Bhagavatam and in other scriptures how much misery there is that a householder may experience once he is enveloped in the family atmosphere. How much of suffering there is. So if we hear from the Shastra and we say, yes, correct, so I don't have to go and experience it myself. So I will stay away from it. Just hear and learn, better be brahmachari all lifelong. तो जो व्यक्ति शास्त्रों से सुनता है श्रीमद् भागवत से कि जो गृहस्थी में प्रवेश करता है, भले कृष्ण भावना भागवत गृहस्थी हो, फिर भी दुख बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा. तो एक बार जो बुद्धिमान व्यक्ति सुन लेता है वो ब्रह्मचारी कि हाँ ऐसे करने से कष्ट होगा तो ब्रह्मचारी रहना बाबा, अब आगे नहीं जाना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति. दूसरे श्रेणी का व्यक्ति है केवल सुन के क्यों देखें कि गृहस्थ आश्रम में तकलीफ है, नहीं है? किसी को और गृहस्थों को देखना चाहिए क्या उनका अनुभव है. सो मे बी अनदर ब्रह्मचारी विल से ऑल राइट वी हैव हर्ड इन भागवतम यस बट आई वांट टू सी फॉर माय सेल्फ आर द गृहस्थ रियली सफरिंग. मैं देखना चाहता हूँ वास्तव में जो गृहस्थ लोग हैं क्या वो पीड़ित हैं, मैं देखना चाहता हूँ. फिर गृहस्थों की दुख भरी कहानियां सुन लेते हैं थोड़े बहुत, तब सोचते हैं हाँ बाबा बाबा भाई भाई नहीं जाना ऐसे, ये क्या क्या तकलीफ है इनके घर में. हाँ, when he says let me hear from some grihasthas, let me hear his tale of woe, then when I hear it then I'll be convinced. So many times grihasthas come and pour out their hearts to brahmacharis, you know, I have this problem, that problem. Then he says yes, yes, now I have realized too much suffering grihastha life, I will not go, I better be a brahmachari. The third category of brahmachari will say, well, I have heard in the shastra so many grihasthas suffered, I have seen many of our grihasthas suffering, but maybe I won't suffer so much. So let me experience it and see. Maybe I will also be able to be a little happy at least. तो कोई हो सकता है तीसरे श्रेणी के ब्रह्मचारी विचार करे, हाँ शास्त्र में सुना तो है, देखते भी हैं कई गृहस्थ भक्त हैं उनके जीवन में क्या कष्ट आते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे जीवन में ऐसे कष्ट नहीं आए, मैं गृहस्थ बनूं तो कम कष्ट आएंगे, मैं अच्छी तरह से रहूंगा भक्ति करते करते. सो ही स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, ही मे इमेजिन दैट वेल टाइम विल कम वेन इट विल नॉट बी सो बैड, इतना बुरा तो नहीं होगा, थोड़ा हम भक्ति भी करेंगे, ये भी करेंगे, वी ऑल बैलेंस आवर लाइफ, सो इट विल ऑल बी, इट्स ऑल राइट. सो देन ही गेट्स मैरिड एंड देन of course he has to spend many many years like that, and then it becomes too late because his whole life will go away in just trying to adjust his family situation. He has to earn a livelihood now, he has to look after the grown up children, he has to fulfill the demands of the family, he has to undergo so many pains. To ek bar grihastha ashram mein pravesh kar gaya bhakt to phir परिवार के सदस्यों के मांगों को पूरा पूर्ण करना होता है, पैसा कमाना होता है, जगह जगह नौकरी व्यवसाय आदि के बारे में देखना पड़ता है, घर आदि की समस्याएं, रिश्तेदारों की समस्याएं, तो बहुत तकलीफ हो जाता है और ऐसे समय बीत जाता है. सो अ पर्सन हु इज एंटैंगल्ड इन फैमिली लाइफ, इट टेक्स ए मेनी मेनी ईयर्स टू कम आउट. तो एक बार गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर लेता है तो बाहर निकलने के लिए उसे बहुत लंबा समय लग जाता है, और उस समय इस दौरान उसकी काफी शक्ति, उसका काफी समय खत्म हो जाता है. सो इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, अ लॉट ऑफ हिज टाइम इज वेस्टेड इन इनडायरेक्टली ट्राइंग टू सर्व कृष्णा. अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की सेवा करने में उसकी सारी शक्ति और समय चले जाता है. यदि वही व्यक्ति ब्रह्मचारी रहा होता है तो उसका 24 उसके 2400 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए होते. इफ ही वाज अ ब्रह्मचारी ही कुड हैव रिमेंड 24 आवर्स इन कृष्णा सर्विस, बट नाउ ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज हिज डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा. उसे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवा से भी समझौता करना पड़ता है कि थोड़े समय कृष्ण की सेवा करूंगा, थोड़ा समय, ये भी तो कृष्ण के लिए ही परिवार है ना, आफ्टर ऑल द फैमिली इज ऑल्सो फॉर कृष्णा. So he has to compromise his sevas. So therefore for brahmacharis it is essential to know, we should just learn by hearing. Brahmachariyon ke liye ye avashyak hai ki hum keval sun ke hum seekhe. Isliye vishesh karke brahmachariyon ke liye, vaise to sabhi bhakton ke liye, lekin vishesh karke brahmachariyon ke liye shastron ko baar baar sunna aur padhna bahut zaruri hai. Therefore for all devotees, but in particular for brahmacharis, it is very necessary to read the shastras and to hear the shastras on a regular basis. We know the story of Daksha Prajapati from the 6th canto. Daksha Prajapati argued to Narad Muni that you have made my 11,000 sons brahmacharis. You have done a great mistake. You have committed a great offense against me. Daksha Prajapati ne Narad Muni se kaha, आपने मेरे 11,000 लड़कों को ब्रह्मचारी बना दिया, आपने बहुत बड़ी गलती की, मेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। वैसे ये किस प्रकार के वैरागी बनेंगे? जब इन्होंने संसार के भोग का अनुभव नहीं किया है, तब वो कैसे समझेंगे कि संसार के भोग करने से दुख मिलता है? नहीं संभव है। इसलिए इनका वैराग्य टिकेगा नहीं, इनका वैराग्य अपूर्ण रहेगा, ये सच्चे वैरागी नहीं बन सकते। सो दक्ष प्रजापति's लॉजिक वॉज दैट माय डियर नारद मुनि, यू हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट अनलेस अ पर्सन एक्सपीरियंसेस मटीरियल एंजॉयमेंट एंड रियलाइजेस बाय एक्सपीरियंस द सफरिंग दैट कम्स आउट ऑफ दैट मटीरियल एंजॉयमेंट, ही विल नॉट बी एबल टू बी फिक्स्ड इन हिज वाउ ऑफ रिनाउंसिएशन। हिज रिनाउंसिएशन विल बी इनकम्प्लीट because that renunciation is not backed by actual experience of the suffering of material enjoyment. तो वो जो वैराग्य है उसका आधार अनुभव होना चाहिए। जब तक अनुभव नहीं है भोग से उत्पन्न होने वाले दुख का, तो व्यक्ति अपने वैराग्य के जीवन को टिका के नहीं रख पाएगा। So दक्ष प्रजापति was talking about which category of persons. दक्ष प्रजापति किस श्रेणी के व्यक्ति हैं? Third. दक्ष प्रजापति is third category person because his principle is experience, then you will learn. Experience, suffer, and then you will learn that yes, this is bad. By that time it's too late. लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। आदमी की सारी आयु खत्म हो चुकी होती है और फिर पुनर्जन्म और फिर से वही बात अनुभव करके सीखो। सो बाय द टाइम यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज टू लेट, यू आर ओल्ड मैन बाय नाउ। देन नेक्स्ट लाइफ अगेन द सेम स्टोरी, यू हैव टू लर्न बाय एक्सपीरियंस। बात यह है कि हमने अनुभव ये सब कर लिया है। दक्ष प्रजापति को यह उत्तर देना चाहिए मैं कि अनुभव तो हम सब ने कर लिया है इतने जन्मों से, फॉर सो मेनी लाइफ टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड। सो इन दिस वन लाइफ व्हाई डू वी नीड टू एक्सपीरियंस? वी हैव हर्ड फ्रॉम शास्त्र दैट इज सफिशिएंट। तो इतने जन्मों से अनुभव किया है तो इस जीवन में भी अनुभव करने की क्या आवश्यकता है? केवल श्रवण करके हम सीख जाए। सो दीज आर द फोर कैटेगरीज ऑफ पीपल। सर्टनली वी शुड नॉट गो टू द फोर्थ कैटेगरी। In the West, we find it is very, very common, and it is slowly beginning to happen in India also. हम देखते हैं कि पश्चिम देशों में ये बहुत प्रचलित बात है और धीरे-धीरे से भारतवर्ष में भी शुरू हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अपने जीवन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार शादी करते हैं। There are people, men and women, who marry twice, thrice, 5 times, 8 times, 10 times. Many famous people also they do that. कई प्रसिद्ध लोग भी ऐसे करते हैं। शादी कर लेते हैं, एक महीने के बाद शादी टूट जाती है, तलाक। They marry because sense gratification is the basis. Within 1 month, divorce. Then they're looking for somebody. They marry somebody else. Again, divorce. They've not learned from the first experience. They have not learned how miserable is the experience. तो बार बार एक बार तलाक हो जाता है, इतने झगड़े, इतना क्रोध, फिर अदालत में झगड़े करो, ये करो, वो करो, इतना दुख होता है। So much suffering that comes out of any divorce. So they have gone through the whole process, but again they want to experience it. And again, 7, 8, 10 times. 8-10 बार ऐसे विवाह कर लेते हैं, अनुभव करके भी सीखते नहीं है। तो अधिकतर लोग ये चौथे श्रेणी में हैं, बार बार करने के बाद भी सीखते नहीं। सो मोस्ट पीपल nowadays आर इन द फोर्थ कैटेगरी। दे डोंट इवन लर्न बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। व्हाई सो? क्यों है लोग इस चौथे श्रेणी में? व्हाई आर मोस्ट पीपल इन द फोर्थ कैटेगरी? एनी आंसर? टू वर्ड्स, uncontrolled senses, that's all. तो क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित हैं, इसलिए व्यक्ति अनुभव करने के बाद भी बार बार वही चीज को करता है। So because the senses are uncontrolled, despite the previous bad experiences, a person is driven to do the same thing again and again. Srila Prabhupada gives the example of a lady who gets pregnant, when she delivers a child, it is the most painful experience in the world. एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत दर्द होता है उसमें, उस बच्चे को जन्म देने में, और उस समय वो कहती है और कभी नहीं, और आई डोंट वॉन्ट दिस, नेवर आई वॉन्ट टू गिव बर्थ अगेन, दिस पेन इज अनबेरेबल. बट वेरी शॉर्टली अगेन शी इज प्रेग्नेंट. फिर थोड़े समय बाद फिर से वो गर्भवती हो जाती है. सो दिस इज द सिचुएशन. Despite the previous bad experience, we continue to do the same thing because of uncontrolled senses. तो अनुभव के बाद भी हम वही चीज करते रहते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां इस विषय को ले आ रहे हैं. Because the topic is how to control the senses and what happens when there are uncontrolled senses, that is being discussed here, and therefore Prabhupada gives the examples of these different categories of people. क्योंकि यहां विषय षड वेगम है तो इंद्रियां वश में नहीं होने से क्या होता है ये चर्चा है. इसलिए प्रभुपाद जी यहां इन चार प्रकार के लोगों की का उल्लेख कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइम, बिकॉज नाउ अगेन डिवोटीज हैव टू गो फॉर प्रसाद सर्विंग प्रिपरेशंस, सो नेक्स्ट टाइम, दैट इज टुडे इज व्हाट, वेडनेसडे, सो ऑन फ्राइडे वी विल ट्राई टू फिनिश द फर्स्ट वर्स purports and maybe go on further also. So please, it's a request, please read and come and bring your book with you. तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया इसको पढ़िएगा, पहले और दूसरे श्लोक के तात्पर्य को भी, और अपना किताब साथ में लाइएगा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय. गो प्रेमानंदे हरे कृष्णा.